अपने बच्चों को दिल खोल के दुआएं दे। इवन जब वो तंग करे ना, देखिए उस वक्त आपका दिल दुखी होता है ना, अल्लाह ना करे किसी को जवान औलाद तंग करे, क्योंकि छोटे चिंटे पिंटे वो जो चिक्के पिक्के से होते हैं वो तो कुछ चीजें फैलाते हैं, तकिए फैला दिए या अपने खिलौने फैला दिए ना, तो वो तो बेचारी छोटी छोटी मासूम जाने हैं। लेकिन बड़े बच्चे सताए ना तो रो के दुआ शुरू कर दिया करें, दुखी दिल की दुआ कबूल होती है। अब मैं जी बुल मुस्तर रोई ज्यादा। और यकीन करें अगर कोई बच्चा रिबेलियस है, अल्लाह ना करे बागी आगे से चीखता है, आप रो के अल्लाह से दुआ शुरू कर दें, उसके दिल को हाथ पड़ेगा कि पता नहीं माँ की बददुआई ना लग जाए मुझे। तो बददुआएं ना दें औलाद को, बल्कि अल्लाह से दुआएं करें कि इनको हिदायत दे दे। इस पर एक बड़ा प्यारा एक्सपीरियंस मैं कर चुकी हूँ, और मुझे याद आ रहा है कि वो UAE का ही कोई मुल्क था, तो वहां हमने ये बात की कि बच्चों के लिए दुआ किया करें। मैंने कहा जब बच्चे ना ना सुने तो आप दुआ किया करें। तो अगले सेशन में, 3 दिन का मेरा सेशन था, तो वो सिस्टर तीसरे दिन आखिरी दिन में आई, तो कहेंगे मैं अपना एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ। और वो यही था कि कहती बच्चे बहुत तंग है, छोटे थे बच्चे उनके जैसे लाइक ट्विंस थे ना, तो छेड़ रहे हैं चीज़ें, तंग कर रहे हैं बहुत। तो कहने लगी कि मैंने मना किया ना बात है ना, तो मैं तो रोने वाली हो गई, मैंने जहनवाज बिछा के ना हाथ उठा के ऊंची ऊंची कहना किया, ए अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे, अल्लाह मेरे बच्चों को हिदायत दे। कहने लगी जो ही उन्होंने ये बात सुनी ना, फौरन वो अपने छोटे छोटे जायनमाज लेकर जो उन्हीं के लिए थे घर में, मेरे पीछे आके तो बैठ के ना जैसे तशहुद में बैठते हैं, तो कह रहे हैं ए अल्लाह हमें हिदायत दे, अल्लाह हमें हिदायत दे। तो आप बताइए कि उनको नहीं मिलेगी। चीज को लाइट कर दिया करें, हर वक्त गुस्से और हवनक बनने की जरूरत नहीं होती। तो बहरहाल आगे चलते हैं, 7वां अमल हजरत इब्राहिम की सीरत से औलाद के नाते से क्या मिलता है कि औलाद के लिए शिर्क से बचने की दुआ कीजिए। शिर्क 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 इसको कभी ना भूलें। अल्लाह ना करे हमारी नस्लें शिर्क के अंदर आ गईं, तो फिर तो आप सोचिए कि हमारा कुछ भी नहीं बचेगा। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ की थी, सूरत इब्राहिम आयत 35 से 36, वजनुबनी वबनी या नाबुद अलअस्नाम रब्बी इन्नहुन्ना अदललना कसीरा मिनन्नास। ए मेरे रब मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत करने से बचा, क्योंकि उन्होंने अक्सर लोगों को गुमराह कर दिया। तो अपनी औलाद को शिर्क के खतरात से आगाह कीजिए, उससे रोकने की बात करें, वरना तो आज बच्चे कहने लगे क्या फर्क पड़ता है, कोई चर्च में चला जाए, सिनेगॉग में जाए, मंदिर में जाए, क्या है, सब बुलाते तो रब को है, कोई रब कहता, कोई भगवान कहता, कोई खुदा कहता, कोई गॉड कहता। तो बच्चों को शिर्क की कबाहत से बहुत अच्छी तरह आगाह करके दुनिया से जाएं, ताकि इससे अल्लाह ताला बचा दे उनको। फिर 8वां अमल क्या है कि औलाद की नस्लों के नेक होने की दुआएं की इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, यानी बेटों के लिए नहीं बल्कि बेटों के बेटे और बच्चों के आगे से भी आगे, उनकी सिर्फ दुनियावी ख्वाहिशात को नहीं देखा बल्कि बच्चों की बच्चों के लिए। 3 आयतें नोट कर लें कुरान पाक के, आपको 3 मुख्तलिफ मकाम लिखाती हूँ, ताकि कल आप भी इन सारी दुआओं की रोशनी में अपनी नस्लों के लिए दुआ करें। पहला मौका कुरान में सूरत बकरा की आयत 128 में है, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमत लक। ए हमारे परवरदिगार हम दोनों को अपना फरमाबरदार बना, और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत अपनी फरमाबरदार बनाए रख। अल्लाह अकबर, आमीन तो कहिए, अपने लिए भी कहें, अपने प्यारों के लिए भी कहें। फिर दूसरा मुकाम है सूरत बकरा 124, अल्लाह कहते हैं वज़िब तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फातम्महुन फातम्महुन क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामन क़ाल व मिन ज़ुर्रियती। और जब इब्राहिम को इनकर अपने चंद बातों में आजमाया तो फरमाया कि मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। आपने फरमाया यानी मेरी औलाद का क्या बनेगा, तो क्या पता चला कि औलाद की मोहब्बत अंबिया कराम के दिलों में होती थी। और तीसरा मुकाम नोट कर लीजिए, सूरत अल बकरा 129, रब्बना वब असफीहिम रसूलम मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा किताब वल हिकमत व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ए हमारे परवरदिगार इनमें एक रसूल भेज जो कि इन्हीं में से हो, इन्हें तेरी आयात पढ़ पढ़ कर सुनाए, इन्हें किताबो हिकमत की तालीम दे, इनका तज़किया फरमाए, बिलाशुबा तू तो गालिब हिकमत वाला है। तो आपको भी पता चल गया कि अगर आप भी दुआएं करेंगे तो अल्लाह कबूल करेगा। और मज़े की बात देखिए, अल्लाह ने अपने खलील की सारी दुआओं को कबूल फरमा लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इन सारी दुआओं का अहतमाम हमसे ये तकाजा करता है कि हम अपनी औलादों की औलादों के लिए उनके दीनदार होने और अल्लाह के फरमाबरदार होने और उनके नेक होने की दुआएं करें। हमारा हाल क्या है, जरा सा थोड़ा सा नौखा भी है दिल में, एक सोगवारी भी है, और अपने देसी कल्चर को सामने रख के बात करूंगी, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अक्सर लोगों के बारे में आप देखें, जो जो बूढ़े होते जाते हैं ना, दुनिया की हिरस और मालो दौलत जमा करने का लालच बढ़ता जाता है, औलाद के बारे में फिक्र तक नहीं होती कि हमारी औलाद की तमाम नस्लें दीन की कारबंद, वो बेटियां क्या पहनती हैं, वो चुस्त पजामे हैं, वो टखने खुले हैं, वो पेट दंगे हैं, या बेटों की नजरें ऊपर उठती हैं। अल्लाह हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सोच दे, अपनी औलादों और उनकी जुरियत के नेक होने के लिए फिक्रमंद हो, कोशिशें करने वाले हों, इंशाल्लाह अल्लाह जाया नहीं करेगा। चलिए फिर अगला अमल लेते हैं, नंबर 9, रिस्क की फराखी की दुआएं, बहुत जरूरी है। बस लोग सोचते हैं कि बस बच्चों के साथ दीन दीन की बातें करें और ख़त्म, दैट्स इट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हालांकि आप देखिए, अगर आपके बच्चों के पास रिस्क होगा और वो नेक होंगे, तो वो रिस्क किस काम आएगा, अल्लाह के रस्तों में आएगा। तो वालदैन की दुआएं औलाद के लिए कीमती सरमाया होती हैं, और इनका असर अल्लाह अकबर कबीरा आपके दुनिया से जाने तक रहता है। इसलिए आप अगर वालदैन है, कुछ दे सकते हैं नहीं, आप उनको महंगे कपड़े लेके दे सकते हैं कि नहीं, आप उनका सेलफोन दे सकते हैं नहीं, ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं नहीं, उसमें तो पैसा लगता है, वक्त लगता है, कभी नहीं भी देनी चाहिए वो चीज़, लेकिन दुआएं तो दीजिए। जब बच्चा आपसे कुछ मांगे ना, तो आप दुआएं दें, कुछ भी मांगे आप उसको दुआएं दें। अच्छा, मेरे बेटे को अल्लाह इतना देना कि बड़े होके इतनी महंगी गाड़ी ले, अल्लाह मेरा बेटा इतना नेक हो, इतना अच्छा बने कि इसको जाकर आगे तू फरारी देना, और जो मर्जी उनकी दुआओं में ढाल दें। ये एक टिप दे रही हूँ आपको, बच्चा आपसे फ़ोन मांगे, आप दुआ कर दें उसकी, अच्छा मेरे बेटे को अच्छा, जब ये इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगा, जब इसके हक़ में ये बेहतर है, दे, ये दुआ करा करें कि अल्लाह मेरे बच्चे को फ़ोन तब देना जब वो इसके काबिल हो, इसको गाड़ी देना जिसमें इसकी जान और ईमान की सलामती हो। तो इसके साथ दुनिया की दुआएं करनी चाहिए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सिर्फ दीन नहीं मांगा या आखरत नहीं मांगी, दुनिया दी, और वो दुआ क्या थी कि अल्लाह वो रिस्क ना देना कि जिससे वो तेरी याद से गाफिल हों और वो आखरत में वबाल बन जाए, बल्कि वो रिस्क दे कि फकर की वजह से कहीं तेरी नाशुक्री का शिकार ना हो जाए, तेरे शुक्र गुजार बने। और ये कहाँ है दुआ, सूरत इब्राहिम की आयत 37, वरज़ुक्हुम मिनस समराती लअल्लहुम यशकुरून, या अल्लाह इन्हें फलों से रिस्क दे ताकि वो तेरे शुक्र गुजार बने रहें। और 10वां अमल हजरत इब्राहिम की सीरत से जो मिलता है, औलाद को नेकी के कामों में शामिल करना, बैतुल्ला की तामीर जैसा नेक कारनामा अपने बेटे इस्माइल को शामिल कर रहे हैं। हम होते कहते पीछे हो जाओ, पीछे हो, काम करने दो, चलो चलो मेरी मत ना मारो। देखिए, बाप अगर मिस्त्री है तो बेटा मजदूर है। अल्लाह अकबर, सूरत बकरा 127, वैस यरफ़ इब्राहीम अल-क़वाइद मिन अल-बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्ला की दीवारें तामीर कर रहे थे, तो ये दुआ कर रहे थे कि हमारे रब, ये हमारी तरफ से कबूल फरमा, बिला शुबा तू सुनने वाला जानने वाला है। क्यों कह रहे थे ये, इसके लिए एक जुमला लिख लीजिए कि असल चीज़ काबिलियत नहीं, कबूलियत है, कबूलियत है। हम काबिलियतें बढ़ाते रहते हैं और हमारे अल्लाह से ताल्लुकात बिगड़े होते हैं, कबूलियत नहीं होती। और कबूलियत कैसे होगी जबकि हमारी अल्लाह के ताल्लुक़ की डोरियां टूटी होती हैं। तो काबिल जितने मर्जी हो जाएं, कबूलियत की शर्त मनाएं। आप देखिए, मिसाल देती हूँ, किसी से आपकी नाराज़गी है और वो आपको पका हुआ मज़े का पुलाव भेजे, आपकी दोस्त है, खुद बात नहीं करती और अपनी मासी के हाथ आपको कढ़ी चावल बना के भेज दे, कैसा लगेगा, कहेंगे रहने तो मैं भूखी नहीं हूँ। और जिससे ताल्लुक होता है, जिससे दिल मिला होता है, बंदा उसके लिए तड़पता है, वो कहते मैं तैयार हूँ, लो ना, अच्छा ये दाल बनाई, अच्छा जल्दी से भेजो, वाह मज़ा आ गया। आज उम्मत मुस्लिमा रस्म व रिवाज में खो गई। अब हम सब जो कर रहे हैं, कुर्बानियाँ देंगे चंद दिन के बाद, नमाज़ें दिन में 5 बार पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह से ताल्लुक़ कितना है। लिख लीजिए अपने लिए चंद बातें। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमारा अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ा हो। जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ को अच्छा करेंगे, फिर फ़ायदा होगा, तो ईमान की दुरुस्तगी सबसे पहले मतलूब है। फिर नमाजें पढ़े, फिर रोजे रखे, फिर कुर्बानियां करें। हम अमल करते रहते, कट्टे पड़ जाते, माथे पे मेहराब पड़ जाती, लेकिन अंदर रूह नहीं आती, ताल्लुक नहीं होता। कुछ लोगों के लिए अल्लाह से मुलाकात हाय मर जाऊंगी, खौफ है, और कुछ की मंजिल है। वो तो उसके लिए जीते हैं कि कब मुलाकात होगी। मन अहब्ब लिक़ा अल्लाह, अहब्ब अल्लाह लिक़ाहु, अल्लाह उससे मोहब्बत चाहता है। याद रखिए, जिन लोगों ने इस दुनिया में रहते हुए तैयारियां की हुई हैं, वो हर लम्हे तैयार हैं। वो तो मौत के लिए मुंतजर हैं, वो तो कान लगाए बैठे हैं कब अपने प्यारे रब से मुलाकात होगी। वो तो हर हुक्म सुन के आमन्ना व सद्दक ना कहते हैं, और इसके बरक्स दूसरा गिरोह फरार जाता है। अल्लाह की ज़ात हमें समझ नहीं आती, मगर उसकी सिफात हमें समझ आती हैं, क्योंकि उसने बहुत सारी अपनी सिफात हमारे अंदर रखी हैं। मतलब प्यार करना, नरमी, सखावत क्यों रखी? ताकि हम लें। तो यहाँ ही ये बात समझ लीजिएगा कि औलादों को नेकी के कामों में शरीक करते हुए खुद को भी नेकियों की असल रूह पे रखिए। आपने बच्चों को नेकियों की तरफ रग़बत दिलाइए, कबूलियत की फिक्र कराइए कि वो उनकी फितरत का लाजमी हिस्सा बन जाए कि नेकी करें। मसलन नमाज के लिए जाएं तो बच्चों को साथ लेकर जाएं, स्कूलों में आएं, मदरसों में आएं, ख़वातीन आएं, दरसो तदरीस के लिए आती हैं, बच्चों को साथ लाएं, सिखा के लाइए। और वहाँ भी थोड़ा सब्र का इजहार होना चाहिए, जहाँ और एहतमाम करते हैं वहाँ बच्चों को एक जगह अलग बिठाने का एहतमाम करें, बच्चों के लिए कुछ वहाँ खेलने का या बच्चों को सिखाने का एहतमाम कीजिए। फिर इसी तरह बच्चों को कैसे शामिल करें, उनके हाथों से सदका करवाइए, बाकी खैर के काम कीजिए। और जैसे मैंने अभी तذکرہ किया कि अपने कामों में यूथ को लाइए, जैसे हमारा दिन रात का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह दिन में दो बार कमोबेश कहूँगी कि लाइव ब्रॉडकास्ट होती है। अब बूढ़ी 40 50 60 70 की खवातीन नहीं कर सकती जैसे 17 18 साल की बच्चियाँ करती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दिन रात लोगों के वॉलंटियर फॉर्म्स मिलते हैं। और हमारी यूथ फोर्स है जो इस वक्त दिन रात नेट और सोशल मीडिया के जरिए इस पैगाम को फैलाने में आम है। और मैं आज भी दुआ करूंगी कि इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में जो सिस्टर जो जिस एज की भी हैं साथ हैं, अल्लाह ताला उनको अपने लिए चुन ले, वो इस काम के आगे और बढ़ जाएं और बढ़ें। कोई लिखता होगा, कोई क्लिक लगाता होगा, कोई चेक करता है, बोलता कोई है, मेरा तो सिर्फ बोलना आप सुन रहे हैं, बाकी काम अल्लाह अपने बंदों से कराता है। अपनी बच्चियों को लाइए, वरना याद रखिए अगर जन्नत में चले गए और बच्चे वहां ना हुए तो क्या करेंगे? इमेजिन तो कीजिए, वो जन्नत हमारे लिए जन्नत नहीं होगी। अफसोस की बात है, आज वालदैन खुद नेकियों में मशगूल होते हैं और औलाद पता नहीं घर में क्या करे। बच्चों को कहीं भेज दो, जाओ जी घर में दर्स है, मियाओं को घरों से निकाल के औरतें दर्स कराती हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। उनको भी एंटरटेन दीजिए, उनके लिए भी कुछ इंतजाम कीजिए। बाज बाप कमाते रहते हैं, कारोबारी मामलात करते रहते हैं और बेटे पता नहीं किधर हैं। तो याद रखिए, ये अपनी औलादें हैं, कहाँ से लाए हैं? जब सब कुछ इनको दिया है तो इनको दीन भी आपने देना है। 11वीं सुन्नत लीजिए हजरत इब्राहिम की सुन्नत से कि नेकी के कामों में औलाद से मशवरा करना। लास्ट सेशन में भी आप सुन चुके हैं, यहाँ इसको एक पॉइंट बना लीजिए कि बाप सरपरस्त है, वो कोई फैसला कर दे, बच्चे उसके आगे सर झुकाने को तैयार होने चाहिए। माँ बेटी को कुछ भी कह दे मानना चाहिए, लेकिन औलाद पर जबरन हुक्म तसल्लुत करना हिकमत से खाली है। दुनियावी मामलात में भी औलाद से मशवरा कीजिए, कॉन्फिडेंस आएगा। इसमें पेरेंटिंग ए टू जी पूरी सीरीज है, यंग बच्चों से कैसे मामला करें उससे फ़ायदा आप उठा लीजिए, बिगड़े हुए बच्चों से कैसे मामला करें, गुस्से वाले बेटों को कैसे डील करें, ये सब बातें अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें पहले हो चुकी हैं। लेकिन आज सिर्फ हज़रत इब्राहिम का वो अमल कि जिसमें अपने बेटे से कहते हैं कि माँ जा तरा, तू क्या कहता है बेटे, तेरा क्या मशवरा है? तो बजाय इसके क्या कि बेटा मैं तुझे ज़िबा करूँगा, मैंने ख्वाब देख लिया था, ये है वो है, बल्कि क्या कहते हैं, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बहु का फंदुर माजा तरा, तू बता बेटा कि तेरा क्या मशवरा है? तो बेटा भी बोला काल या बते फल मा तू मर सतजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, सूरह साफात की आयत 102। तो आप यकीन करें आपकी यूथ बहुत अच्छी है, कभी अपने बच्चों को बुरा ना कहें। यंग बच्चे तो आंखों के तारे होने चाहिए, लाडले होने चाहिए। हम छोटे बच्चों को गुदगुदाते और जब तक वो रो ना पड़े हम उसके गाल खींचना नहीं छोड़ते। तो ये बड़ों को भी तो कभी प्यार कीजिए, कभी उसके बालों में हाथ डालिए, वो भी छोटा सा ही है आपका, क्या वो अगर उसका कद आपसे कोई 2-4 इंच ऊपर हो गया, उसको लाड चाहिए, प्यार चाहिए। तो बच्चों से मशवरे किया करें, इससे उनमें कॉन्फिडेंस आता है। बेटा क्या ख्याल है, दर्स रख लें? बेटा क्या ख्याल है, ये काम करें? बेटा क्या ख्याल है, हम ये नेकी करें? और आप देखेंगे कि इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे अपने घरों में बच्चे हैं माशाल्लाह, हिफ्ज़ किया हुआ, तो एक बच्चा है वो माशाल्लाह हाफिज़ है कुरान, आवाज़ भी बड़ी प्यारी, कहीं से उसने यूट्यूब का चैनल बनाना सीख लिया, छोटा सा बच्चा है। तो अपनी छोटी सी वीडियो बना के उस चैनल पर डाल के मुझे कहते हैं पुप्पो अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को भेज दें। तो मैं सोचती हूँ कि इस बच्चे को अगर अल्लाह ने ये शौक भी दिया है दीन का भी तो दुनिया का, तो इसको अगर मैं अच्छी जगह यूज करूंगी तो ये बच्चे कल मेरे ही माविन बन जाएंगे। तो याद रखिए, घरों में तनाव नहीं होना चाहिए, तंग नजरी नहीं होनी चाहिए, दिल से बच्चे आपसे दूर ना हो। बच्चा इधर बैठा, आप उधर बैठा, और मेरा तो आजकल इतना दिल बना हुआ है, यकीन करें, लेके बैठी हूँ दिल में एक मौजू कि किसी वक्त भी बस इस पे निकलना है कि अनसीन बॉल्स हैं आज। आज औलाद एक साथ पिकनिक पे चले जाएं, साथ नहीं बैठते। आप शादी में चले जाएं, बच्चे कहते हमने नहीं जाना। माँ बाप खाने पे जाओ, कहते नहीं। साथ होके हाथों में जो गैजेट है, बच्चा कुछ और देख रहा है, माँ बाप कुछ और देख रहे हैं, तो ये अजनबियत। जिसका बच्चा नहीं वो तो कहेंगे लोग बच्चा नहीं, तो जिनके हैं उनके कहाँ साथ है, अकेले जाते हैं माँ बाप जहाँ भी जाते हैं। पता नहीं आप उनको देख के कितना खुश होते होंगे, मैं तो बर्दाश्त ना कर सकूँ इस चीज़ को कि आप हैं और आपका बच्चा नहीं। तो हमेशा अपने बच्चों को साथ रहें। वो किसी ने शायद ऐसी ही मेरे ही दर्द वाली बात किसी ने कह दी कि कुछ वो खिंचे खिंचे रहे, कुछ हम तने तने, इसी कश्मकश में टूट गया रिश्ता चाह का। आज औलादों के माँ बाप के ताल्लुक में खिंचाव है, उदासी है, अजनबियत है, वेवलेंथ नहीं मिलती, उनको कुछ और अच्छा लगता, हमें कुछ और अच्छा, हमारे तो खाने नहीं मिलते। एक माँ कहती क्या पकाऊं, जो पकाऊं बच जाता है। मैं खाती और मेरे मियाँ, मैंने कहा वो बच्चियाँ बच्चे, कहती वो क्या खाते, हम मियाँ बीवी पका के सब्जी दाल जो हमारा देसी खाना रखते हैं वो नहीं खाते, नहीं भूख नहीं, भूख नहीं। जब हम उठ के कमरे में जाते हैं चुपके चुपके उतरते हैं, कोई पास्ता बनाता, कोई नूडल बनाता, और वो ऐसे जैसे किराएदार है वो खाना लेके ऊपर चले जाते हैं। अल्लाह ना करे ऐसी उदासियाँ आपको मिले, और जिनके ऐसी हैं अल्लाह ताला उसको दूर करे। तो याद रखिए, सबसे ज़्यादा आपको खुशी होगी, आपका दिल खिलेगा जब आपके बच्चे आपके साथ होंगे। हिकमत से चलिए, ये बड़े मुश्किल पेपर है, इसको ऐसे ही ना बेतुका हल कर दीजिए। हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा है, फिर मुशावरत में बरकत है, इत्तेहाद और इत्तफाक की फिजा और अल्लाह की रहमत है। सूरह आले इमरान 159 में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, बशाविर हुम फिल अम्र, ए नबी आप सहाबा से मशवरे लें। देखिए नबी को अल्लाह कह रहे हैं सहाबा से मशवरे लें, तो फिर आप मैं तो हमारी अकल में कौन सी कोई इतनी की पुख्तगी है कि हम अपने आप को बहुत ही ज्यादा बड़ा समझें। और मोमिनों की सिफत क्या है, सूरत शूरा की आयत 38 में, वअमरुहुम शूरा बैनहुम, और इनके मामलात आपस में मशवरे के साथ होते हैं। तो क्या पता चला, घर का निज़ाम हो, किसी बड़े इदारे का निज़ाम हो, मशवरे के बगैर काम नहीं होगा। चलिए 12वीं सुन्नत लेते हैं हजरत इब्राहिम से, नेकी की वसीयत करना। हम तो वसीयतों में जायदादें और घर की बातें करते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को नेक और साले बनाने के लिए सारी तमहीदें पूरी कर चुके, साजगार माहौल मुयस्सर किया, नेकी की रगबत दी, सही तरबियत की, और उसके बाद इसके नेक बनने के लिए अल्लाह से दुआएं की, फिर नेक कामों में अपने साथ शरीक भी रखा, नेकी के कामों में मशवरा किया, फिर अपनी उम्र के हर मरहले में औलाद के बड़ी उम्र को पहुंचने के बावजूद इनकी तरबियत से पहलू तहीन नहीं की। ये भी लिखिए जुमला, हम छोटे बच्चों की तरबियत की फिक्र करते हैं, बड़े हों तो हम कहते हैं नहीं अब तो हम कुछ नहीं कहते, और इससे भी बढ़ के जब बच्चों की शादियां हो जाती हैं हम कहते हैं बस अब तो गए जी, हमने तो अपने घर से अच्छी भेजी थी, अब पता नहीं वहां जाके नमाजें भी पढ़ती हैं कि नहीं। गलत बात है, जिंदगी के आखिरी दम तक आप अपने बच्चों का हक रखते हैं, फर्ज भी है और हक भी है। तो इतना कुछ करके सारी जिंदगी तरबियत करते रहे, और जिंदगी के आखिरी लम्हात में इन्हें मजीद नेकियों पे कायम रहने की वसीयत फरमाते हैं। कहाँ लिखी है ये बात, सूरत अल बकरा 132, वसा बिहा इब्राहीम बनी ही व याकूब या बनी या इन अल्लाह अस्तफा लकुमुद्दीन फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को मुंतखिब फरमा लिया, बस तुम इस्लाम पर ही मरना, यानी मौत इस्लाम पर आए, शहादत की मौत की दुआएं करें, जिंदगी मान अली होगी तो मौत इंशाल्लाह इस्लाम पे आएगी, हर वक्त मुसलमान बन के रहो। और आज शादीशुदा बच्चा, जवान बच्चा, माँ बाप अपने आप को बिल्कुल हथड़ कर लेते हैं आपकी जुबान में तवज्जो दिलाई जाए, तो कहते हैं बस क्या करें, बच्चा बड़ा है, मेरी तो मानता नहीं, क्या करूं, जवान खून है, घर से भाग जाएगा, और बाहर के मुल्क वालों को तो एक और गम भी है, पुलिस आ जाएगी और बरनेबान आ जाएगी। नॉर्वे में बरनेबान कहते हैं बच्चों की पुलिस को। इस तरह की बातें आप सभी जानते हैं, हर मुल्क के अपने काम होंगे। तो याद रखिए, बच्चे की तरबियत साथ साथ चलती जाएगी। बहुत दोरंगापन है आज, तजाद है, दीनी तरबियत से हाथ उठाए हुए हैं, और दुनिया की तालीम पे दिल भी खिलते हैं और मेहनते भी हैं। कारोबार और दौलत और दुनिया, यानी वो बातें अब क्या कहूँ मैं। हमें हज़रत इब्राहिम की सीरत के इस मुताले से ये सब कुछ पता चल रहा है कि मरते दम तक ये गम साथ रहेगा, और ये रिश्ता ऐसा है दुनिया में आने से पहले बनता है और दुनिया से जाने के बाद भी नहीं टूटता। और फिर उसके बाद 13वीं सुन्नत, औलाद के लिए अमली नमूना बनना चाहिए, ये है सबसे बड़ी बात। सूरत बकरा आयत 131, क्या कहा? अस्लिम, कल असलम तो ले रब्बिल आलमीन। ए इब्राहिम मती हो जा। का मती हो गया? जब माँ बाप अल्लाह की मानेंगे तो फिर बच्चे उनकी क्यों ना मानेंगे। इब्राहिम की अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह की फरमाबरदारी और इताअत में गुजरी, औलाद के लिए अमली नमूना बने रहे। आपकी तरबियत पर नाफरमानी की गुंजाइश ना निकल सकी, हमेशा फरमाबरदार रहे, ये लाजवाल मिसालें कायम हुई। तो याद रखिए, पैगंबर तो वैसे ही एक उसवा होते हैं, एक नमूना होते हैं, उनकी जिंदगी सबके लिए एक रोल मॉडल की सूरत की होती है, दाई लल्ला भी होते हैं, लेकिन हर इंसान के लिए ये अमल है, एक मुरब्बी, एक मुज़क्की, एक दाई लल्ला, अपनी औलाद के लिए तरबियत है। ये नहीं कहा कि बेटा कह दो अब्बू घर पे नहीं है, अम्मी ये नहीं कर रही, बच्चे आपको देख रहे हैं, सुबह शाम देखते हैं, आपको देखना सबसे बड़ी उनकी तरबियत है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जवानी में अपने काफिर बाप से आज़र से अदब और एहतराम से बात कर रहे हैं, बेटे के साथ बात करते हैं या बाप के साथ करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बेटा देख रहा होगा ना, इंशाल्लाह आपके इनके आज जो आप कर रहे हैं वो असल में अपने बच्चों में भर रहे हैं। वो कहते हैं ना, ये फैज़ान नज़र था या के मकतब की करामत थी, सिखलाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। आज सीरत इब्राहिमी को फरामोश करने वाले वालदैन ये ख्वाहिश रखें कि हमारे बच्चे इस्माइल जैसे फरमाबरदार हो जाएं और खुद वो इब्राहिम जैसे ना बने, तो ये नहीं होगा। बाप इब्राहिम होगा तो बेटा इस्माइल होगा अलैहिस्सलाम, या माँ खदीजा होगी तो बेटी फातिमा होगी। आज औलाद के सामने बैठा बाप कश ले रहा है, कभी कोई सिगरेट नोशी और कभी कुछ, कभी हुक्का दही और कहीं कुछ, खुद नमाज ना पढ़े और बच्चों से नमाज पढ़वाए। एक बाप को देखा, किसी ने सुनाया कि वो खुद नमाज नहीं पढ़ते थे तो बच्चों को मारते थे नमाज पढ़ने पे। किसी ने कहा भाई ये क्या करते हो, कहेगा मेरी नमाज मेरा मामला है, लेकिन कल मुझे इनके बारे में पूछा जाएगा तो ये तो पढ़े। इसी तरह एक शौहर है तो अपनी बीवी को डांट रहे हैं और डिबट रहे, इतनी सख्ती करें नमाज पे और खुद नहीं पढ़ते। कहा क्यों? कहा मेरी मेरी अल्लाह के साथ, पर इसकी नमाज मुझसे पूछी जाएगी, ये तो पढ़े। ऐसी तबलीग का कोई फायदा नहीं होता। माँ बाप बाप खासतौर पर मस्जिद ना जाए तो बच्चा कैसे नमाजी बने। याद रखिए, एक जुमला लिख लीजिए कि माँ बाप का ईमान सहाबा का होगा ना, तो बच्चे फिर ताबईन बनेंगे, फिर उनका ईमान कभी ताबईन पे और तबा ताबईन पे जाएगा। शम्मा से दूरी पे, कैंडल से दूर होते जाएं तो अंधेरा होता है ना, आप अपने ईमान को बढ़ाते जाइए तो कुछ कम होगा तो चलो ताबईन तबा ताबईन मुहद्दसीन आइमा कराम तक तो होंगे। तो अगर हमारा ईमान बिल्कुल कोने पे खड़े हैं कि किनारों पे खड़े के होकर इबादत कर रहे हैं, सूरह हज में अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि कई ऐसे मैं याबुदुल्लाह ला हर्फन, बेटे को हाफिज बना रहे हैं और माँ बाप ने कुरान नहीं पढ़ा, बूढ़े हो गए औलाद के सामने दाढ़ी मंडवा रहे और बेटा समझे कैसे करेगा, तो ये नहीं होता। अगली बात पे चलते हैं, 14th पॉइंट, सीरा से इब्राहिम की हुक्म रब्बानी को औलाद की मोहब्बत पे तरजीह देना। ये तो हम पीछे देख भी चुके हैं, वो बेटा जो दुआएं मांग मांग कर लिया, जो बुढ़ापे की औलाद थी, जो अकलौता फर्जंद था, फिर भी बाप के साथ चलने फिरने और बुढ़ापे की उम्र को पहुंच रहा था, बाप बूढ़ा था बेटा जवान हो रहा है, और उसी गर्दन पे छुरी रखवा दी, उसके लिए क्या? आज आप देखिए कैसे हम इन चीजों को देखते हैं। आज अपने ऊपर लेकर सोचिए, जिहाद को तो पीछे कर दीजिए, नमाज के लिए 5 वक्त बच्चा जाए तो माँ बाप परेशान हो जाए और कहाँ कहाँ उसको ज़िबा कर दो। तो असल बात यह है कि अल्लाह ने भी मोहब्बत ले ली इब्राहिम से। असल बात यह है कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके मेरे लिए, ये सारी चीज़ें इतनी बड़ी बनेंगी। आप देखिए कि अपने आप को इस नुक्ते पे बिल्कुल खाली कीजिए हर चीज़ से, आपका मेरा मामला जब तक अल्लाह से सीधा नहीं होगा बात नहीं बनेगी। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। हम सब मुख्तलिफ तरीके से नेकियां करते हैं। मुसलमान होने का मतलब क्या है? 5 वक्त की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, कुर्बानी। हाँ, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चंद जुमले आखिर में आज बोलूंगी जो शायद आपके मेरे लिए इस सेशन के बाद फायदा दें, और उसके बाद फिर जो हम अगली बात सुने उसके लिए जहनी तौर पे तैयार हो जाएं। और वो क्या है कि जब हम कहते हैं ना कि आमंतु बिल्लाही व कुतुबिही व रुसुलिही, तो ये एक दावा होता है। मोहब्बत असल रूह है ईमान की। आप जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह कहकर, यानी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं ना, तो जब आप ये दावा करेंगे ना, तो इसकी दलील मोहब्बत होगी। कुरान पाक में भी ये बात आप पढ़ते हैं, हदीसों से भी आपको पता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिउनी युहबिबकुमुल्लाह, कह दीजिए कि अगर तुम मोहब्बत करते हो अल्लाह से तो मेरी इत्तबा करो, मेरे रसूल की इत्तबा करो। फिर वो हदीस भी आपने सुनी होगी कि उस शख्स का ईमान मुकम्मल नहीं जब तक कि उसको अल्लाह और उसका रसूल हर चीज़ से प्यारा ना हो जाए। फिर सूरह तौबा में आप आयत भी पढ़ते हैं जिसमें 8 चीज़ों को बुनियाद बनाकर कहा कि कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व अशीरतुकुम, गिन के चीज़ें रखी, क्या का अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। तो फिर याद रखो कि अल्लाह तुम्हारे पास आएगा और तुम भी इंतज़ार करो, अल्लाह देखेगा। तो असल बात यह है जो हम सब के लिए इस वक्त अपने आप से पूछने और करने की, और वो क्या है कि ईमान भी ठीक है कि नहीं। अगर आज अमल में कमजोरी है, नमाज मुश्किल लगती है, कुर्बानी के लिए पैसे पूछते हैं, हाय कैसे, कितने का, सस्ती किस मुल्क में मिलती है? यानी आज कुछ लोग कुर्बानी ऐसे देते हैं जैसे कुछ टैक्स देता है। हालांकि आप देखिए कुर्बानी क्या है, उसकी रूह क्या है, लिखिए मोहब्बत, जिससे जितनी मोहब्बत होती है उसके लिए इतनी कीमत का तोहफा खरीदा जाता है। जहाँ मोहब्बत ज़्यादा होती है वहाँ हम ज़्यादा खर्च करते हैं, पैसे भूल ही जाते हैं। इसके बरक्स आप देखिए कुछ लोगों से सिर्फ जान छुड़ानी होती है, देना दिलाना है, अच्छा रख लो ये जोड़े देने के काम आएंगे, अच्छा ये उसको देंगे उसको देंगे, बस आप पाकिस्तान जाते हैं गिफ्ट्स लेते हैं। कुछ लोगों के लिए आपने सोचे मैं 10 दिरहम का गिफ्ट, बस 10 यूरो का गिफ्ट, चलें बस 100 क्रोन का ही मिल जाए तो बड़ी हो गई बात। लेकिन जहाँ बहन माँ बीवी बेटी जिनसे हमारी मोहब्बत होती है ना, ये जो चंद जुमले आप बोलने लगी ना, इसको अपने कुर्बानी के जानवर से पहले ज़रूर जहन में रखिएगा, और फिर आपको सारी ही बातें समझ आ जाएंगी। और वो क्या है कि जिससे जितनी मोहब्बत होती है, जो उस बंदे की हमारे दिल में कीमत होती है, हम उस दर्जे की कीमती चीज़ उसके लिए लेते हैं। हमें जिनसे मोहब्बत है उनके लिए महंगी चीज़ लेके कभी कहा कितना दे दिया, आज तक किसने कहा बच्चों को कितना दूध पी लिया? तो हमारे दिल के अंदर मोहब्बत होती है। आज अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत अगर सारी मोहब्बतों से भड़के नहीं, तो फिर नमाजें भी फायदा नहीं देंगी। हम बस अपने इल्म को ईमान कहने लगते हैं। बस आप देखिए कोई कहते सदर ओबामा अमेरिका के सदर हैं, तो ये खबर है, ये कोई ईमान थोड़ी है। बाज़ लोग ला इलाहा इल्लल्लाह का दावा करते हैं, हालांकि रिश्ता पेवन बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। मोहब्बत ईमान का जुज है, वरना बाकी वहमो गुमान के बुत हैं। अल्लाह ने भी इब्राहिम को जब खलीलुल्लाह चुना तो औलाद पे हाथ रखकर पूछा जरा देखो तो सही, यानी एक सवाल लेके कि इब्राहिम को क्यों दिखाया गया कि बेटे को ज़िबह करें, कोई और चीज़ रख ली जाती? वैसे ही बता दिया जाता कि कोई चीज़ कीमती अल्लाह के रास्ते में 1,000 की दे रहे हैं, 10,000 दिरहम की, 1 लाख की दे रहे। नहीं, अल्लाह देखना चाहता था कि औलाद ज़्यादा प्यारी है या हम ज़्यादा प्यारे हैं। इसी तरह आपका मेरा इम्तिहान है। तो याद रखिए गायतुल हुब और गायतुल ज़ुल, ये 2 दर्जे हैं मोहब्बत के। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम बात करेंगे, अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो। और बस ये कह दीजिए कि जहाँ अल्लाह का हुक्म आए हम झुक जाएं, अपना उसवा बेहतरीन उसवा होता है। और जितना आप अल्लाह से मोहब्बत करते जाएंगे आपका ईमान आला होगा, आपकी कुर्बानियाँ खूबसूरत होंगी, अल्लाह के रास्ते में वक्त देना माल देना ये बोझ नहीं लगेगा, तावान नहीं लगेगा, मगरम नहीं लगेगा, बल्कि ये मोहब्बत लगेगा। क्योंकि आप जितना अल्लाह ताला के लिए खालिस होते हैं उतना आपको मिलता है। और अना पे पाँव रख दीजिए, आप और मैं अना को काबू कर ले जन्नत एक कदम दूर है। हमारी अना पे चोट पड़ती है, सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ते रहते हैं, ज़कात देते हैं, लेकिन अना पे काबू नहीं पाते। अल्लामा इकबाल के बारे में एक बात याद आ गई कि उनकी बहन थी और सियालकोट में आपको ये रहते थे, उनकी बहन नाराज़ होकर मैके आ गई, कई साल रहीं। बिलाखिर जो बहनोई था इनका, उसको ख्याल आया, उसने पैगाम भेजा कि इसको वापस भेज दो। तो अल्लामा इकबाल को गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि क्यों, अब क्यों भेजें, इतनी सारी ज़िंदगी मेरी बहन की बर्बाद कर दी। तो इनके वालिद बड़े समझदार इंसान थे, उन्होंने अल्लामा इकबाल के सामने आकर कुरान की आयत पढ़ दी जिसमें क्या है, बस सुलखु खैर। बस ये जुमला सुनते ही उनका रंग फक हो गया, सोच में पड़ गए। बाप ने बाद में पूछा बताओ क्या इरादा है, कहा वो इरादा है जो अल्लाह का इरादा है। पहले तो अपनी अना थी ना कि मैं उस शख्स के साथ बहन को क्यों भेजूं जिसने मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बाद में एहसास हुआ कि नहीं, जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो उस पर नहीं रुकना और अल्लाह की बात को ही मानना है। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो।